होते। ऐसे ये वेद हैं कि जैसे सीता लंक में झारे, अब सीता लंक में थोड़ी थी, वो तो वहां थी चित्रकुटी में। अगर आम व्यक्ति ऐसे सोचेगा नहीं, इनका कहने का भाव और देखना। ऐसे ही वेद है कि श्री रामचंद्र जी के आदेश से लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, कार दी थी, और सीता जी ने रामचंद्र को कि उस कार का यानी उस रेखा का उल्लंघन कर दिया तो लंका में पहुंच गई। गई सी गई गई शब्द नहीं लिखा इन्होंने, क्योंकि ये पद भाग जो है इसमें फिर गायन का भी हिसाब रखना पड़ता है, कौन सा राग का हिसाब रखना पड़ता है। ऐसे ही वेद हैं। तो इसमें जो सामवेद में भी किया है तो ऐसे किया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर अपना तेज पुंज का एक और ज्यों का त्यों समन्या, वैसा ही दूसरा जो दूसरा बने, वैसे तो वास्तविक शरीर उनका इतना तेजो में है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप का प्रकाश तो भी फीका पड़े। अब वो अगर नौका नू यहाँ आ जा तो किसी ने कुछ दिखाई ना दे, तो उसके ऊपर एक हल्के तेज पुंज का ओवर कोट और पहन के, और वो भी नाड़ी नूड़ी के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना होता, वो अकायम असनाविरम, ये हमारे जैसी काया नहीं है, वो सनाई नाड़ी के जोड़ जुगड़ से नहीं बना उनका, वो तेज पुंज का होता है। क्या अर्थ बनाया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपना ही दूसरा रूप बना के कुछ समय वस आने माने वस माने वस के आन माने मनुष्य की तरह जीवन जी के, कुछ समय मनुष्य के जैसा जीवन जीकर रहकर आम व्यक्ति जैसा लक्षण दिखा के और अपने सत्ज्ञान को संसन निवचनानी संसन लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णन करके करता है, और उस समय इन विचक्षण माने चतुर संतों के द्वारा दिखे तो विद्वान पर विदुता निकट भी नहीं होती, उनके द्वारा के एक पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की साधना ना बता के आन उपासना अन्य परब्रह्म ब्रह्म देवी देवता नीचे तेंगे इन ये पूजाएं रूपी मवाद को, अमृत के स्थान पर पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो अमृत और आन उपासना एक परमात्मा की भक्ति छोड़कर कहते हैं पुयम पुयम आने मवाद चम वो आवत स्वय माने पूरे अपने प्रवचनों के माध्यम से चम वो माने आदत के साथ पिला रहे होते हैं, आचमन करा रहे होते हैं न्यूकर के मंत्र बोल के न्यूकर प्याना था अमृत और पूरा वो मवाद पिला रहे हैं, और भोली आत्मान जान के करें पीना पड़े भाई क्योंकि संत जन है ये सही बता रहे होंगे। इससे बुरे इससे जो है और ज्यादा क्या भगवान हमें कहेगा उन अज्ञानी प्राणियों के लिए जो इस जीवन प्यारी आत्माओं के मानव शरीर को और कैसे बर्बाद कर रहे हैं। कहते उस समय वो परमेश्वर आता है और अपने सत्ज्ञान रूपी छुपे हुए अपने ही वित्त माने धन को खजाने को और जगा कर चला जाता है, जगाता है, इसका सीधा अर्थ बने। तो यही दास कहना चाहता था कि वो परमात्मा कबीर है जो अपने सत्ज्ञान को आप ही आता है, आप ही बताता है, और आप ही संत, आप ही भक्त, आप ही दास और आप ही परमात्मा का रोल करता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि वो परमात्मा, जैसे अभी तक सभी संतों की महापुरुषों की व्याख्या है कि परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अब किन की व्याख्या है, जो दिखे विद्वान पर उनकी भक्ति साधना ठीक नहीं, उनको आप ज्ञान नहीं। किसी भी महापुरुष की आप उठाकर देखिए, किसी भी महापुरुष की वो क्या बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, और वेद बताते हैं परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र चारों वेद स्पष्ट वर्णन करते हैं और कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसका तेजो में शरीर है और वो परमात्मा उसका नाम कबीर है। अब वो परमेश्वर आता है, वो क्या बताता है, एक समय की बात है, एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े सेठ बांधोगढ़ के रहने वाले थे। अब जैसे परमात्मा की तलाश इस प्यारी आत्मा को उसी समय से है जब से ये नीचे उससे बिछुड़कर आई है, जब से ये उससे बिछुड़कर आई है तभी से उसकी तलाश है, और जब तक ये उससे नहीं मिल लेगी इसकी प्यास बुझ नहीं सकती, चाहे यहां पर कितना धन हो जावे और चाहे कितना ये संतान का संतान हो जावे, चाहे किसी प्रकार का भी सुख ये महसूस करे, भाई बोलो मत, कमाल करे, सत्संग सुनो तुम, तो उसे जब तक ये अपने मूल मालिक से आत्मा नहीं मिलेगी तब तक इसको कोई सुख, चाहे यहां कितना ही सुखी दिखाइए परंतु इसकी तसल्ली नहीं हो सकती। वो प्यारी आत्मा आदरणीय श्री धर्मदास जी वैश्य जाति में यानी वैश्य कुल में उसका जन्म बनिया था, इतना सेठ के पैसे की गिनती नहीं थी उनके पास, इतना पैसा था। कहते हैं बांधोगढ़ के नरेश आपत्ति काल में धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। उस प्यारी आत्मा को परमात्मा की तरफ तलाश थी, एक गुरुदेव भी बना रखा था जिसका नाम श्री रूपदास जी था, वो श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर सबसे बड़ा भगवान बताकर और फिर श्री राम श्री कृष्ण का जाप हरे राम हरे कृष्ण सीता राम राधे आदि के मंत्र भी और साथ में भगवान शिव की पूजा भी, जैसे हम पहले साजली पूजा किया करते थे सारी मिल मिला के, ऐसे उसको बता रखा था और साथ में एकादशी के व्रत के लिए दृढ़ कर रखा था कि बेटा एकादशी का व्रत किया कर, और फिर कहा कि तेरे पास तो धन बहुत है पुत्र, 68 तीर्थों का भ्रमण कर चारों धामों पर घूम का पुत्र, तुझे क्या होगा कि स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने स्वर्ग सुना था और स्वर्ग से ज्यादा हम किसी को मानते ही नहीं थे, क्योंकि हमें गुरु ऐसे ही मिले थे जिनको आप पूर्ण ज्ञान नहीं। वो प्यारी आत्मा अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार कहां पहुंचे, मथुरा में पहुंच गए, किस लिए कि वहां भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, भगवान कृष्ण का क्रीड़ा स्थल था, लीला स्थल था, बचपन वहां गुजारा था, और इतना ध्यान हमारे मन में कभी नहीं आता भगवान तो मथुरा छोड़कर चले गए थे इन दुष्टों की जो ना दुर्भावना देख के, वो तो वहां रहे नहीं थे उस गंदे क्षेत्र में, क्योंकि कभी जरासिंह लड़ाई करने आवा था, कभी शिशुपाल आवा था और कभी कोई और दुखी करे था, और फिर उस आखिर में एक काल्यवन रही थी, कसर काल्यवन निकाल दी, उनको ऊपर चढ़ाई कर दी, तो भगवान ने सोचा इन पागलों के अंदर क्यों अपना पीस ऑफ माइंड खराब किया, क्यों अपने शांति मानसिक बर्बाद करी, ना जाने कितने जीवों की हत्या होगी, रोज लड़ाई करने से अच्छा क्यों ना अपना एकांत स्थान में चले जाएं। तो भगवान तो उस मथुरा ने त्याग कर चले गए थे, जिसको ये मुक्ति क्षेत्र समझे कि वहां जाने से बेड़ा पार होगा, कुछ सोच को हमारे अंदर दिमाग नहीं रहा, छोटा को नहीं, इन महापुरुषों ने जिन्हें अपना पेट बनगा धंधा ढूंढ रखा, एक स्थान विशेष पर जाने से जीव की मुक्ति बता दी, जिससे भोली आत्मा वहां जाने लगी। मथुरा में पहुंचा, उस तालाब में स्नान किया, कहते हैं यहां श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे, चलो भाई वहां जाकर के क्या किया, सुबह सुबह पहले तो स्नान किया उसी सरोवर में, तीर्थ में एक तालाब होता है तीर्थ, उस तालाब के अंदर स्नान किया और उसके बाद बाहर आके एक लोटा जल का उसी से भर लिया, स्वच्छ अपना पवित्र जल समझ के, और बाहर आकर के ऐसे एक स्थान लीपा मड प्लास्टर थे गाय का, और गाय का गोबर और पीली मिट्टी बढ़िया मिट्टी मिला के और बढ़िया स्थान पवित्र किया, उसके ऊपर स्वच्छ कपड़ा बिछाया धोया हुआ, और वहां रख के फिर एक पत्थर की मूर्ति भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की, और वहां अपना उसके उनके कपड़े उतारे, पुराने कपड़े उतार के एक तरफ रख दिए, नए स्वच्छ कपड़े मूर्ति के पहना दिए, तिलक लगाया, माला डाल दी, फिर मुकुट रख दिया और फिर लगया उनकी दीप जगाया, फिर ऐसे धूप आरती की। उसी समय वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर परमेश्वर, अब उसी समय वहां क्योंकि वो मथुरा काशी में आए हुए थे परमेश्वर, एक लीला कर रहे थे, वसाने एक आम व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे थे और वहां रह रहे थे और वहां प्रकट हुए। वहां से अंतर्ध्यान होकर काशी थे, वहां प्रकट हो गए अपनी प्यारी आत्मा को सत्ज्ञान बताने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा 10-20 फुट की दूरी पर, 10-50 फुट की दूरी पर बैठ गए। अब धर्मदास जी ने देखा कि किस रूप में बैठे थे परमेश्वर, एक जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, ऊपर एक काला सा टोप होता है, ऐसे कपड़े से अपना ऊंचा चोटा होता है, लंबा गोल गोल सा, और एक पूरा ओवर कोट काला सा घुटनों से नीचे तक का पहन करे, और उसको जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, जिंदा महात्मा कहते हैं। तो वो बैठ के इतनी दूर यानी 20-30 फुट की दूरी पे, अब धर्मदास की तरफ एक टक देख रहे हैं प्रभु। धर्मदास देख रहा है कि ये मुसलमान तेरी क्रिया को बड़े प्रेम पूर्वक देख रहा है, हो सकता भक्ति का जिज्ञासु हो, और ऊंचे ऊंचे स्वर में गीता जी का पाठ करने लग गया बहुत प्यार से और अच्छी लय लगा के। अब कबीर साहब जब उसने सारी क्रिया कर ली, जब कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को चरणों में लेने के लिए क्या कहते हैं, अपने आप को एक बुद्धिहीन ज्ञानहीन और भक्तिहीन बताते हैं, क्या कहते हैं, हे उस आत्मा को जिसको नरक से निकालना चाह रहे थे उसको महात्मा कहते हैं, हे परमात्मा, हे दयालु, क्या कहते हैं कि हे वैष्णो साधु विष्णु जी के उपासक, मैं बहुत जगह घूम लिया हूँ, मुझे प्रभु की तलाश है, मुझे मजहब की नहीं, मुझे प्रभु की तलाश है, मुझे सतमार्ग नहीं मिल पा रहा, पर मुझे ऐसा लगता है आपके वचनों से कि अब मैं ठीक ठिकाने आ गया हूँ। अब ऐसा कोई किसी के प्रति कहे तो फिर वो आत्मा जिसमें जो जैसी साधना करता है उसका वो प्रयत्न करता है उसको अपने ज्ञान से पूरी रूप से समझाने की, नहीं अगर पहले यूं कह दे तू क्या कर रहा है तेरी तो साधना बिल्कुल गलत है तो एक नहीं सुने मनमाना लड़ पड़े। तो परमात्मा ने एक दास बन के अपने आप को एक दास बन के एक आम गुलाम बन के और कहते हैं मेरा कल्याण करो महात्मा जी। तो धर्मदास जी ने सोचा बड़ी प्यारी आत्मा है, तो मुसलमान होकर हिंदू से भक्ति पूछे, भाई भाग उदय हो गए इसके, तो क्या कहने लगे कि बताऊं जिंदा बैठ जा मेरे पास। मैं कबीर साहब ने पूछा कहां से आए हो महात्मा जी, कि मैं बांधोगढ़ का रहने वाला हूं और वैश्य हमारी जाति है, वैश्य कुल में हमारा जन्म है और हम किसी छोटी जाति वाले से बात नहीं करते, हम अछूतों से दूर रहते हैं और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, जो प्राणी जीव हिंसा करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस दृष्टिकोण से बोल रहे थे कि ये मांस खाते हैं मुसलमान लोग और इसलिए इसको पहले आगाह कर दूं कि ये बुराइयां तूने त्यागनी होंगी यदि भक्ति करनी है तो, और मैं भगवान विष्णु श्री कृष्ण श्री राम का जाप जपते हैं और भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय भी जपते हैं, एकादशी का व्रत रखता हूँ, गुरुजी मैंने श्री रूपदास जी मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे कहा है 68 तीर्थ के भ्रमण के लिए मैं चला हुआ हूँ और स्वर्ग जाऊंगा। कबीर साहब कहने लगे महात्मा जी आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ। धर्मदास बोला क्यों नहीं, प्रेम पूर्वक करो, कितने करो कोई बात नहीं, कि देखो आपका उपास्य इष्ट कौन है, कि हमारा उपास्य इष्ट श्री विष्णु जी है, विष्णु जी की क्या शक्ति है, वो कितने भगवान हैं। कहने लगे वो सर्वशक्तिमान अजरो अमर सारी सृष्टि के रचनार, कबीर साहब ने पूछा क्या उनके माता पिता भी हैं क्या कि नहीं, वो तो अजरो अमर है, उनके कोई माता पिता नहीं, सब ब्रह्मंडों के रचनार कुल मालिक हैं, और वो तो अजरो अविनाशी परमात्मा सत्यनारायण है। आप गीता जी का पाठ करते हो, गीता जी के पाठ से क्या होगा, गीता जी से पाठ से मुक्ति हो जाएगी, गति हो जाएगी और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कबीर साहब कहने लगे देखो महात्मा जी मेरे मन में थोड़ी शंका आती है, नाराज ना होना, लेकिन पूछूंगा अवश्य, मैंने जब आपको गुरु बनाना है तो रूपदास रघुदास जी कहने लगे देखो मैं बता दूंगा समझा दूंगा, लेकिन गुरु तो मैं नहीं बनूंगा, लेकिन अपने गुरुदेव से नाम तुझे जरूर दिला दूंगा। कबीर साहब बोले बहुत अच्छा, धन भाग होगा मेरा जो आप ऐसे मेरे पर मेहर करोगे। धर्मदास कहता पूछो क्या पूछना है। आप मानते हो कि गीता जी के पठन पाठन से कल्याण हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं, गीता में लिखा है जो इसको पढ़ेगा और सुनेगा उसका जो है ना, हमारे संवाद को जो पढ़ेगा या सुनेगा दोनों का ही कल्याण हो जाएगा, अर्थात तो मुझे ही प्राप्त होंगे। गीता बोल कौन रहा है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं? कबीर साहब कहने लगे एक बात बताओ, प्रथम तो मेरे मन में ये शंका आती है कि गीता जी के पाठ करने से मुक्ति होगी, मेरे मन में ऐसा आता है जैसे एक किसान अपने पुत्र को, जो पुत्र एक किसान था उसकी वृद्ध अवस्था में पुत्र प्राप्त हुआ, जब किसान की 60-65 साल की आयु थी तब पुत्र की 10-12 वर्ष की उम्र थी। अब किसान ने सोचा कि तेरा बेटा इकलौता पुत्र है और कहीं भविष्य में अपने व्यवसाय में ये मार ना खा जावे, इसलिए अपना अनुभव एक बही में लिख दिया, एक बुक में डायरी में नोट कर दिया पूरा विवरण, कौन सी क्रॉप कौन सी फसल किस समय बीजनी है, कितने समय के बाद उसमें फर्स्ट वाटरिंग यानी पहला पानी डाल देना, सिंचाई करनी है, कितने समय के बाद फिर खाद डालना है, कितने के बाद, उसकी पूरी विवरण लिखकर बड़ा कहा रख दिया और कहा बेटा इस बही में जो मैंने लेख लिखा इसको पढ़ लिया करिए, और बेटा कहीं दिक्कत आवे ना तुझे अपने व्यवसाय में तो इसको पढ़ लेना, और जैसा इसमें लिखा तू ऐसे अपना व्यवसाय की, जब ये खेती करिए मार नहीं खाओगा पुत्र। अच्छा पिताजी, अब धर्मदास एक बात बता, उस पिता की मृत्यु के उपरांत और वो पुत्र क्या करे, उस रोजाना सुबह सुबह दीप और धूप जगा कर अच्छे स्वस्थ स्थान पर बैठकर और उसमें जो लिखा है ऐसे पढ़ ले, पिताजी ने लिखा है कि गेहूं की फसल का सीजन इतने इतने से इतने समय तक होता है, उसमें इतनी बार पानी डालना होता है, उसमें ऐसा करना होता, वाह जी वाह क्या बात कही, और फिर आदर के साथ तय करके रख दे और ऐसे करे नहीं जो उसमें लिखा है, तो क्या वो फसल हो जाएगी या वो धनी होगा या कंगाल होगा? धर्मदास ने तो सियाना था, बनिया था, दिमाग था, ने बोला जी उसमें क्यों था, वो तो ऐसे करना ही पड़ेगा जैसे उसका पिताजी बतावा था। तो ऐसे ही भगवान ने गीता में लिखा है कि अर्जुन 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता है और वो न तो परम गति को प्राप्त हो, न उसको सिद्धि हो, न कोई सुख हो, इसलिए तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है और दूसरी बात नहीं, ऐसे ही करना। कहने का भाव ये है भगवान का गीता में कि मैंने जो संदेश दिया है इसको कोई पढ़ेगा और सुनावेगा और फिर ऐसे करेगा तो भाई मेरे पास यानी उसकी उसको लाभ होगा, और केवल गीता के पाठ से मुझे तो दस्ता नहीं लाभ होगा। वैसे तो किसी भी जैसे ये पवित्र शास्त्र हैं, जैसे पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल जी, पवित्र कुरान शरीफ यानी पवित्र चारों कुरान और पवित्र चारों वेद, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गीता जी, इनमें से आप मान लीजिए कोई श्लोक निकाल लें, उसकी आरती बना लो, उसी का पठन पाठन करो, उसे नित नियम कहते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ वाणी निकाल के नित पाठ कर लेते हैं, ऐसे ही गीता का रोज पाठ कर ले या वेदों में से कुछ श्लोक निकाल कर उसका ओम भरवा तत्स्वीतुर्य बना लिया ये तू और ऐसे कुरान शरीफ में तो पांच बार की नमाज बना ली, ऐसे ही पवित्र बाइबल से प्रेयर बना ली, इनसे लाभ तो होगा। कैसे लाभ होगा? जैसे उनके पढ़ने से हमें ये ज्ञान होगा कि क्या करें क्या ना करें। ये रोज इसलिए बताया कि एक बार देख लेना आदमी का, जैसे हम नित पाठ करते हैं नित नियम, तो क्या लिखा परमात्मा ने, सुमरण से भला होवेगा ना तो भला ना होवे। अब फिर हमारे दिल में दख से ही होना चाहिए कि इसको पूरा करके सुमरण करेंगे, क्योंकि भगवान ने लिखा है कि कहता हूँ कि जा तू सुनता है सबको, और वही भजन तो भला होगा ना तो भला नहीं होए। फिर उसमें लिखा है गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। तो ऐसे करना है जो उसमें संकेत है, रोज पढ़ने का अर्थ ये नहीं है पढ़ ले और करे उसके विपरीत तो पढ़ा और ना पढ़ा व्यर्थ है। इनकी रोजाना पाठ से आपको ज्ञान यज्ञ का लाभ होगा। ये ज्ञान यज्ञ पांच यज्ञ होती है, एक यज्ञ है धर्म की, जैसे यहाँ ये सदा व्रत चल रहा है, परमेश्वर का ये भंडारा चल रहा है, इसमें किसी के 10 रुपए, किसी के 100 रुपए, किसी के 1000, किसी के 20,000, किसी के 50,000, और इसमें ये अखंड भंडारा चल रहा है, ये धर्म यज्ञ। और साथ में ये आवन यज्ञ, क्योंकि ये जोत जला भगवान की देसी घी की मोटी बात की, 3 दिन में लगभग इसमें 100 किलो, 4 दिन में लगभग इसमें 2 किलो घी प्रयोग हो जाएगा। और फिर यहाँ प्रणाम यज्ञ, जैसे दंडवत प्रणाम करें अपने परमेश्वर के लिए, अपने अहंकार रूपी राक्षस को तोड़ने के लिए। और एक यज्ञ धर्म की, जैसे भंडारा चल रहा है प्रसाद वितरित होता है, धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ ध्यान, हमारा जब सत्संग में आते हैं परमात्मा में चित अटता ही नहीं, रह रह कर याद आता है परमात्मा हे ईश्वर कहाँ फंस गया क्या इस काल के जाल में। और फिर हमारा ध्यान मेडिटेशन सहज ध्यान, संतों का मार्ग सहज ध्यान है, हठ योग नहीं, ये कान दाब के आंख बोझ के ये तो हठ योग है। कबीर साहब कहते हैं ये नहीं हमारा ध्यान, हमारी सहज ध्यान है, सहज समाधि है। कैसे के संतो मुझे सो सतगुरु मन, सो सतगुरु संत कहा वह है, इन नैन कहते हैं इन नैनन दर्श करावे, यानी उस परमात्मा के नैनन अलख लखावे, जो का जो आंख खुली हो और परमात्मा के दर्शन हो जाए, मुझे ऐसा संत आवे। कहते हैं द्वार ना मुंदे, ये आंख कान बंद ना करे, नाक नहीं बंद करे, आंख नहीं बंद करे, और ना अनद उड़ जावे, इस अनद में नहीं उड़ जावे, ध्यान लगा के तो देखी सुनी कुछ, हाँ ये आवाज है, ये परमात्मा की प्राप्ति। अध्यक्ष प्रकाश आंख दाब के, इसने कभी दाब लो इसमें प्रकाश, क्योंकि परमात्मा के रिफ्लेक्टेड प्रकाश से ये दिन का तो प्रकाश ही देवता है, इनमें तो प्रकाश है तो ठीक है, नांदे हो जाएंगे ना होगा तो उसमें। तो कहने का भाव इससे मुक्ति नहीं, ऐसा संत मुझे नहीं चाहिए। वो ध्यान का मार्ग कैसा है, जैसे हम आपको याद दिलाते हैं उस परम पिता के बारे में, उसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और उसकी महिमा की गुणगान करने से आपको उसकी इच्छा, उसकी हार्दिक इच्छा बन जाएगी प्राप्त होने की। अब जैसे आप सत्संग में आ गए, अब जैसे लड़की का रिश्ता कर दिया जाता है, लड़की का जब रिश्ता कर दिया जाता है तो घर के बैठ कर बतलाया करते हैं माता पिता, और फिर माँ बतावे बेटी ने, और बेटी को पता हो जाता है कि मेरा पति ऐसी नौकरी करता है या ऐसा बिजनेस करता है या कोई जमींदारा मजदूरी करता है, उसका इतना मकान है वहाँ पर, ऐसा है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे सास है इसकी, तो फिर उस लड़की का एकदम अट्रैक्शन हरदम वही रहने लग जाता है, और फिर वो उसका उचित अटता नहीं। जैसे फिर लड़की की शादी हो जाती है, अपने पति के पास चली जाती है, अब जब उसको माता पिता ने जो बताया था जो का जो व्यवस्था पाती है, अब जैसे ये परमात्मा कबीर साहब ने हमें आकर बताई, आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर आए हैं, उन्होंने सही बताया। अब आत्मा का की सगाई कर दी परमात्मा ते पूर्ण ब्रह्म ते और दास बिचोला बना के, अब आपको ये याद दिलाए जाते हैं कि अपने पति के घर पे क्या क्या सुख होगा, और फिर उमंग भरेगी उस दुल्हन की तरह हमारे अंदर, और कति आना कानी नहीं होगी, चलेंगे जब यहाँ आते हैं, इतना चासा चढ़ेगा जैसे परमात्मा हुआ तो जाए पार पड़ेगी। तो ऐसा हमारा ध्यान हरदम वहां रहेगा, जैसे पति वर्ता पति से राती आन पुरुष निभावे और वैसे पी हर में और फिर सुरत प्रीतम में, ऐसा ये सहज ध्यान कहावे, ऐसा ध्यान लगावे। जैसे लड़की की शादी हो जा ससुराल से फिर वापस आ जा और फिर उसका एक पल भी चित ठीक है मात पिता मान भाई से सारा सारे ढंग तो रहती है पर उसके अपने पति से एक पल भी वो चित नहीं हटता। ऐसे जब हमें ये ज्ञान और वास्तविक सुख का अनुभव हो जाएगा फिर इस संसार में हमारा ये सहज मेडिटेशन हमारी सुरती उसी के चरणों में और उसी के सुख को, वहाँ क्या क्या सुख है या कितना कष्ट है वो हरदम हृदय से हटे नहीं, इसलिए हमारा चित हम हमेशा उस परमेश्वर के चरणों में लगा रहेगा। और दूसरा सहज ध्यान का आपको बताते हैं, जैसे आपके ऊपर कोई मानसिक परेशानी आ जाए कोई संकट आ पड़े और उसका निवारण हो नहीं, आप चाहे कितनी दूर चले जाओ रिश्तेदारी में आपने अच्छी बढ़िया हलवा और खीर खिलावे लेकिन आपके हृदय से वो संकट वाला स्थान वो वहां से चित आपका हट नहीं सकता, खाना भी खा रहे हो उनसे बात भी कर रहे हो, बात खत्म होते ही आपका चित उसी संकट स्थान पर यानी टेंशन जिसे कहते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति ने लड़की की शादी करनी थी 50,000 रुपये उधार लोन ले लिया ऋण ब्याज पे और फिर आमन नोते देने से लिया गया और तंदूरी यानी जिसमें सो रखा था उस अलमारी को खुले छोड़ गया गलती से और 1,000 किलोमीटर जाके याद आई शाम ने वो होते तो भाई अलमारी खुली छोड़ आया है परमात्मा, गरीब आदमी मुश्किल से तो ब्याज लिया था ब्याज पर लोन बन लिया ए मालिक कोई निकाल ना ले जा। अब वो बात भी करे उनसे नोता भी देवे है रोटी भी खा रहा है उसके लिए खूब उसको खातिरदारी भी हो रही है पर उसका एक पल भी मन उस तजोरी तो नहीं हटता, ऐसे ये सहज समाधि होती है। सुमरण की सुध यो करो जैसे दाम कंगाले कह कबीर विसरे नहीं फिर पल पल लेवे संभाल, सुमरण की सुध यो करो जो सुर भी सुत माही कह कबीर चारा चरत वो विसरत कबहू नाही। ये सहज ध्यान है, कैसे जैसे तारा चल रही है जैसे चारा चल रही है गऊ और ध्यान उसका अपने बच्चे को होता है, चारा भी चल रही है और कोई कुत्ता या कोई हिंसक पशु आ जाता फूफा भी कर जाती है दृष्टि इधर भी रहती है चारा भी चल रही है, ऐसे सुमरण के अंदर भी हमारा सहज मेडिटेशन सहज ध्यान सुमरण के ऊपर रहता है और फिर उस सुमरण से हमें लाभ क्या होगा, यानी जैसे हमने आम बो दिया आम की सेवा में भी ध्यान है और उसके प्रतिफल का भी हमें ये सहज ध्यान है कि इसलिए इसको कर रहे हैं। ऐसे जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी से बतरावे उसमें खंड पड़े नहीं ऐसे ये ऐसे ध्यान लगावे, जैसे क्योंकि गरीबदास जी एक जमींदार थे आम व्यक्ति को हर ढंग से समझाने की चेष्टा करते हैं कि जैसे हाड़ी बीज बो रहा है बीज धुन धुन माने उसमें लौ लग रही है उसकी बीज बीजने में रस्ते में कोई रस्ते से के साथ साथ बीज बीज रहा है और कोई अतिथि आ जाता है यात्री और वो पूछता उससे कि मैंने उस गांव में जाना है मेरा रास्ता ठीक है या नहीं है, उसको रास्ता भी बता रहा है उसको संकेत भी दे रहा है तू ठीक जा रहा है आगे जाके कुआं आएगा उसे बाईं तरफ मुड़ जाना आगे फिर उसके सामने आप देखोगे नीम का वृक्ष होगा उसके लेफ्ट को यानी दाईं तरफ मुड़ जाना सामने देखोगे एक और तालाब दिखाई देगा और साथ में बीज भी बीज रहा है उस बीज के छोड़ने में हल्को रोक भी नहीं रहा है और बीज भी बीज तो उसका ध्यान जहाँ पर है उससे पल नहीं हटा पा रहा। जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी यानी यात्री से बतलावे उसमें खंड पड़े नहीं भाई ऐसे ध्यान लगावे, ये हमारी सहज समाधि है। अब कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि 5 यज्ञ होती है यहाँ पर, एक यज्ञ धर्म की दूसरी यज्ञ ध्यान तीसरी यज्ञ हवन की। जैसे यहाँ पर हवन चाहे तो लकड़ियों में घी डाल के उसमें हवन कर लो क्योंकि लकड़ी ढेर सारी जलाने में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी क्योंकि लकड़ी जलने से तो धुआं प्रदूषण होता है ज्यादा है। वैसे वो चंदन की भी क्यों ना हो उनकी महक से कोई लाभ नहीं, वो तो महक चंदन वैसे भी दे रहा है ना फूकेंगे तो भी महक आती है लेकिन हमारा जो लाभ होगा हमें घी के प्रज्वलित होने से, जो वातावरण और इस यज्ञ से हमारा जो बेनिफिट कहां जाएगा, इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसका बहुत साइंटिफिक इफेक्ट है। हम यहाँ पर हवन करते हैं, इस हवन का प्रतिफल देव लोगों को ऊपर जाता है और उसके बेनिफिट में हमें कुछ आंशिक उसे यहाँ का बेनिफिट, यानी जैसे वर्षा कर देना या कोई और राहत मिलना, साथ में प्रदूषण, जैसे हम श्वास को से शुद्ध हवा लेते हैं और बुरी करके बाहर छोड़ देते, इसका भी हमने ये इसके इसका बेनिफिट यानी इससे इसका कर्ज उतरता है। अब ये हवन यज्ञ है, हम क्या करते हैं, रुई की एक मोटी बात बना के बाची और उसमें भर के अच्छा घी और सुबह शाम जला देते हैं। और मंत्र क्या होते हैं, मंत्र जैसे अपने परमात्मा की वाणी पूर्ण ब्रह्म की, ये वेदों जैसे मंत्र है, वेदों से ज्यादा अच्छे मंत्र। एक तो मुख्यमंत्री का आदेश हो और एक प्रधानमंत्री के मुख से निकले वचन हो, तो वेदों से ज्यादा सुपीरियर शक्तिशाली वचन है यानी मंत्र है कबीर परमेश्वर की वाणी। और फिर उसके बाद उन्हीं की उनके सेकंड नंबर पे उन्हीं के दर्शन के उपरांत इन पांच छह महापुरुषों की वाणी, जैसे आदरणीय गरीबदास जी की, आदरणीय धर्मदास जी की, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी की, आदरणीय दादू जी की वाणी, लेकिन इनसे भी सुपीरियर वाणी उस कबीर परमेश्वर की है, उसके जो मंत्र हम पढ़ रहे उनसे वेदों से भी उत्तम लाभ हमें होता है। जो सुबह शाम के नित्यनेम और आरती, संध्या आरती और दोपहर की रमेणी जो हम करते हैं, ये हमारा एक हवन और साथ में ज्ञान यज्ञ भी है। अब ये और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम, ये भी एक यज्ञ का काम करे। दंडवत प्रणाम करना आम बात नहीं है, ये तो वो पुण्य आत्मा करेगी जिसमें भक्ति का अंश बकाया है, और जिनके अंदर भक्ति अंश नहीं है वो झुक नहीं सकते क्योंकि उनमें वो कीमत अभी बनी नहीं। जैसे सरसों होती है सरसों, और वो सरसों जब तक उसकी फली आ जाती है लेकिन फली में सरसों के दाने नहीं बनते, तब तक वो फली ऐसे खड़ी रहती है आकड़ के, और जो जो क्योंकि उसमें कच्चे दाने हैं, ना खलबन है ना तेल, योज किससे काम नहीं हुआ, इसलिए उसमें आकड़ है क्योंकि उसमें वह कीमत नहीं जो उसने झुका दे। और धीरे धीरे वो परिपक्व जब हो जाती है तो ऐसे लटक जाती है, जमीन को छूने को हो जाती है, उसके बस की बात नहीं। ऐसे जिन पुण्यात्माओं में पिछला भक्ति अंश है, अब एक बार तो करोड़ साल लग गए भाई अच्छी जगह आ गए, सारे बूंदे लौटे, यानी तो सारे लेटते हैं, ये क्या असभ्य सा लगता है, लेकिन नूना बेरा ये असभ्य नहीं, ये बिल्कुल सभ्य कर्म है। असभ्य तो जब होगा जब गधे बन जावांगे, सारी उम्र दंडवत करना, पेट का बल चलना, ढाई बन का बोरा, एक मिनट की फुर्सत ना चौगर दे जुलूस निकले, तो हम अपने भगवान के चरणों में चाहे कुछ भी हो हमारा, जैसे बदरंग मार जाए किसी ने, कितना एंडी पा कर मक्खी मुंह में बड़े और निकले, बता के अभिमानी माटी का, इस मिट्टी को मिट्टी समझ के भगवान के चरणों में लगाए रखेंगे तो ये राजी होगा, ये प्रसन्न होगा। आदिनी के पास आइए पूर्ण ब्रह्म दयाल और मान बढ़ाई मारियो बेअद विसर काल। इस प्रकार हम पांच यज्ञ करते हैं, और बहुत से भक्तात्मा ने कहा हम तो एक हवन यज्ञ करते हैं, बस हवन यज्ञ करते हैं और उसी से बेड़ा पार हो जाएगा, मंत्र पढ़ते वेदों के बस दैट्स ऑल, और गायत्री का जाप करते हैं ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। भाई देखो ठीक है, ये गायत्री जो है चार वेदों में से दो दो शब्द निकाल रखे, चारों वेदों में थे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और ऐसे बना के चलो इसकी सतुति से क्या लाभ होगा, केवल सतुति, जैसे हम बिजली के गुण गावे तो क्योंकि उसमें इस गायत्री मंत्र में क्या है, परमात्मा तू बड़ा तेजो में है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ऐसा कर देता है, तू ऐसा कर देता, ये तो गुण है भगवान में, ये तो है, चाहे रोज गा लो और ना गाओ, जैसे बिजली के गुण गावे, इसका संस्कृत में बना ले चाहे कोई हिंदी में या कोई इंग्लिश में या कोई पंजाबी में, किसी भाषा में उसके महिमा का गुणगान बना ले, कोई गीत राग बना ले, कोई दिक्कत नहीं, उसको गाता रहे बड़ा रोज गाता रहे, और उससे लाभ जो होना है वो तरीका ढूंढे नहीं, जैसे कनेक्शन लेना चाहिए बिजली का, तो बिजली का कनेक्शन लेने के उपरांत ये लाभ देवगी जो गुण रोज गाया करते थे, जिसकी महिमा प्रतिदिन सुना करते थे। कनेक्शन लेने के बाद फिर आपने क्या है कि जरूरत ना पड़े, गुण गाचे मत का उन गुणों का आनंद ले जिसकी रोज व्याख्या होती थी, ऐसे होता है। अब कबीर साहब ने कहा धर्मदास अगर गीता जी के क्यों पाठ मात्र से लाभ हो जावे तो ये तो ना जची बात। फिर धर्मदास असमंजस में पड़ गया, बात तो बिल्कुल सच का है। कहता है हम गीता जी जैसे कहती ऐसे ही तो करते हैं। पहले तो ये बता गीता जी बोली किसने? धर्मदास बोला श्री कृष्ण जी ने बोली। कबीर साहब बोले देखो नाराज मत होना, भगवान श्री कृष्ण काल थे क्या? हक नहीं, नहीं वो काल कैसे थे, वो तो बड़े दयालु थे, बड़े प्रेम था उनमें, यानी सभी पशु पशु भी पक्षी भी ग्वाल बाल भी उनसे बड़ा प्यार पाते थे, वो काल क्यों थे? अच्छा जी ठीक है। अब क्या है कि हम पढ़ रहे हैं रोज का यानी गीता जी को रोज पढ़ रहे हैं, पर उसमें लिखा क्या ये बुद्धि हमारी काम ना करे? क्यों नहीं करे? क्योंकि गीता जी के पांचवें अध्याय में ये ब्रह्म काल कहता है कि मेरे हाथ में जितने मेरे अंतर्गत मेरे उपासक जितने हंस श्रेषी हैं, चाहे जीव हैं प्राणी हैं देव हैं चाहे महादेव हैं, इनका बुद्धि मेरे हाथ में रिमोट है। जब चाहे इनमें ज्ञान रूपी चांदना कर दूं, जब चाहे इनमें अज्ञान रूपी अंधेरा भर दूं। अभी अज्ञान रूप अंधेरा भर दिया हमारे सब कैसे ऋषि हुए चाहे मैं ऋषि हुए, क्योंकि हम इस काल ब्रह्म के साधक रहे, ब्रह्म तक की पूजा इसके हाथ में, ये किसने कैसे नचावे। तो कबीर साहब कहने लगे ग्यारहवें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं। क्या कृष्ण जी काल थे? नहीं नहीं, वो तो वैसे विराट रूप दिखाया था, फिर वहा घूम जा बुद्धि। कबीर साहब कहते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तब धार्मिक व्यक्ति था क्या? बताओ जिंदा, आप क्या बताओगे? आप ही बताओ। अब गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता जब पड़ी तब पड़ी जब अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन के प्रार्थना पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दिया, जब कौरव और पांडवों का युद्ध निश्चित हो चुका था और अर्जुन ने देखा सामने ना जाने कितने वही अपने रिश्तेदार और बहनों के बटेऊ अर्थात बहन होई, क्योंकि काके ताऊ की बहन कोई दूर नहीं होती, और ये भतीजे जिनको गोदी उठाए फिरा कर लिए फिरा करता था दुर्योधन और दुशासन के बच्चों को, आज अपने हाथ से तीर का निशाना बनाऊंगा, और वो भी किसके लिए? एक दो रोटी के लिए। फैसला कर लिया, ना जाने कितनी करोड़ों बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, ऐसे जुल्म न करके यदि हम राज भी पाएंगे तो भी हमारे जैसा पापी नहीं कोई, ये सोच करके बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा। और बैठ गया पिछले से भगवान ने। अब वहां श्री कृष्ण नहीं थे, श्री कृष्ण का शरीर था लेकिन बोल श्री कृष्ण नहीं, उसके अंदर वो काल प्रवेश कर गया, जैसे भूत प्रेत विष आ जाता है, क्योंकि ये काल इन देवों का एक ऐसी सिद्धि होती है, एक सूक्ष्म शरीर बना लेते हैं बहुत छोटा और हमें इन दृष्टि से नहीं दिखता, वो अपनी अपनी रेंज होती है। अब वो इतना सूक्ष्म रूप है उस काल बनाया जा सकता है और जो का तू हमारे सामने मनुष्य जैसा दर्शन भी दे सकता है, फिर उसको सूक्ष्म निराकार नहीं होता, हमें जो दिखाई ना चीज देती है उसे निराकार मान लेते हैं। अब वो सूक्ष्म बन जाता है सूक्ष्म, और सूक्ष्म रूप बनाकर अंदर प्रवेश करके प्रेत, जैसे प्रेत नहीं एक दूसरे में चले जाते हमें दिखाई भी नहीं देते, वो मनुष्य जैसे होते हैं, उनका शरीर मानव सदृश शरीर होता है, भूतों का हम देख नहीं सकते, हमारे आसपास घूमते रहते हैं, वो निराकार नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म शरीर होता है, वो अंदर प्रवेश कर जाए जब इस शरीर से बोलते हैं, खोखा ये होता उनका बोलने का, उससे वो बोल नहीं पाते, और उसके ऊपर एक और कोट और बनाया जाता है, जो परमात्मा आते हैं वो बोल सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर इनसे असंख्य गुना ज्यादा सुंदर, और वो उसमें ये मैटर नहीं हो मैटेरियल नहीं होता, भूत वाला भी नहीं होता। अब क्या होता है, वो काल ने देखा कि अर्जुन भी युद्ध नहीं करेगा, कृष्ण जी भी कह देंगे बदकर भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब गीता जी के ज्ञान की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि युद्ध नहीं कर रहा था अर्जुन, युद्ध क्यों हो रहा था? युद्ध इसलिए हो रहा था कि कौरव और पांडव का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो पाया था, अपना जो राज को वो आधा आधा नहीं बांट पाए थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को हिस्सा देने से मना कर दिया, जिसके लिए श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे। 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि दोनों को समझा करते थे, धृतराष्ट्र को भी कहा करते थे और दुर्योधन और पांडवों को इकट्ठा बैठा कर कहा करते थे, देखो भाई युद्ध करना अच्छी बात नहीं, इसमें ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, और क्या क्या पता युद्ध में किसकी मृत्यु हो जाए, कोई पक्का थोड़ा होता है। तुम अपना आधा आधा बांट लो और प्रेम से रहो दोनों भाई, दोनों कौरव भी पांडव भी। लेकिन नहीं माने, सारे प्रयत्न जब फेल हो गए तो तीसरी बार परमात्मा एक बात सोच कर गए। उन्होंने ये भी फैसला कर लिया था, पहले बंटवारे हो गए थे, वो राजा हमारे साथ, वो राजा उसकी सेना हमारे साथ, वो राजा और उसकी सेना हमारे साथ, ऐसे यहाँ तक बात बिगड़ ली थी। तो भगवान श्री कृष्ण तीसरी बार गए तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये पांडव जो है मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन से ब्याही थी, कि कहीं ये पांडव मेरी जो ऊपर जो है ना दृढ़ हो रहे हो, मेरी शक्ति मान के और ये अनर्थ से नहीं टल रहे हो। परमात्मा ने सोचा त्रिलोकीनाथ ने कि क्यों ना एक पासा और डाल के देख लूं। क्या डाला उन्होंने? दोनों को फिर बुलाया तीसरी बार कि अभी आ जाओ, मेरी एक अंतिम प्रार्थना फिर सुन लो। दोनों को फिर समझा, जब नहीं माने तो क्या कहा भगवान ने कि अभी देख लो, ठीक है एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। और कृष्ण जी कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, ये कसम खाता हूं। भगवान ने सोची थी इस बात से हो सके पांडव ही नरम हो जाए और मेरे साथ चल पड़े, कटे टंटा दो रोटी का धंधा बता, मेरे रिश्तेदार हुआ रह लेंगे अपना बैठ के, क्या बात है। क्योंकि भगवान ने भी तो वराड मिटा दी थी, मथुरा छोड़कर चले गए थे, काल्यवन के साथ नहीं लड़े थे। इस बात को सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकी, अज्ञात तो बात बिगड़ गई, क्योंकि दुर्योधन तो राज सेना मांगे मांगेगा इनकी, और हमने इनको मांगना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे रिश्तेदार हो गए, जब ना मांगेंगे तुम्हारे जैसे निकम्मे नहीं, और भगवान हथियार भी ना उठावे और हमारी पराजय निश्चित है। ये सोच के पांडव पांचों बाहर आ गए, मीटिंग से सभा से बाहर आ गए और आपस में विचार विमर्श करके कहने लगे कि अब तो बात बिगड़ गई, अब तो इसमें इज्जत है अपनी, भलाई है कि भगवान से कहें कि हमें 5 गांव दिला दे, हमारी इज्जत भी रह जावे और ये अनर्थ भी ना होए, ये जुल्म भी ना होए। भगवान श्री कृष्ण को बाहर बुलाया कि एक बार बाहर आना भगवान, हम दो बात करना चाहते हैं। श्री कृष्ण उठ कर गए, पूछा क्या बात है? तो यही प्रार्थना की, भगवान हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जी बड़े खुश हुए, वो बहुत है, बहुत अच्छी बात, धन है तुम्हारे माता पिता ने बहुत बढ़िया सोचा, और आगे अंदर कि जो मैं चाहूं था भगवान होगी, बहुत अच्छा हुआ। अंदर जाकर के कौरव अंदर बैठे थे, पांडव बाहर खड़े थे, अंदर जाकर श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन बात बन गई है और तुम्हारा बंटवारा हो जाएगा, ऐसा काम करो तुम 5 गांव दे दो इनको। वो 5 गांव मांग रहे हैं, कहते हैं हमारी भी इज्जत रह जाएगी और युद्ध भी ना होगा। अब कहा है विनाश काले विपरीता बुद्धि, अब उस दुर्योधन की बुद्धि और ज्यादा बिगड़ गई, उसके मन में ये आ गया कि अब पांडवों के पल्ले कुछ नहीं रहा, क्योंकि भगवान हथियार उठावा ने, इनकी विजय हो नहीं सकती, और अब ये डर गए हैं, क्यों बुराई रखी, ये 5 गांव मांगेंगे कल बराबर में खसेंगे, इनको यहाँ से कति भगा दें। ये सोचकर कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी स्थान नहीं है और उन्होंने युद्ध करना है, युद्ध लेना है तो युद्ध कर ले हमारे साथ। अब इस बात से श्री कृष्ण थोड़े से नाराज हो गए, कहने लगे दुर्योधन तू मानुष नहीं शैतान है, तू तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी नादान, एक कहा 5 गांव कहा आधा राज्य, कुछ तो सोच ले नादान आत्मा तू। इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया, क्योंकि राजा में अभिमान घना हो वो ना शब्द सुन नहीं सकता, दूसरा उसको कोई कह दे करड़ी बात तो वो उसकी भुजा फटकर लग जाती, क्योंकि उसमें अहम हो जाता है विनाश का, विनाश के लिए तैयार हो जाता तुरंत। तो भगवान श्री कृष्ण के की तरफ संकेत करके अपने योद्धाओं से कहा जो सभा में बैठे थे, अपने भाइयों से कहा कि पकड़ दो इस कृष्ण को और डाल दो कैद में अंदर, युद्ध यहीं से प्रारंभ होता है। जब उसने ऐसा किया तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जिससे वो कौरव घबरा गए। श्री कृष्ण बाहर आके चला गया, युद्ध की तैयारी होगी। अब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है और उस समय वो काल 21 ब्रह्मांड का मालिक जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और विष्णु श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, वो विष्णु वाली आत्मा थी। उस श्री कृष्ण के शरीर में वो ज्योत निरंजन वो भगवान ब्रह्म आकर प्रवेश कर गया प्रेतवत। जैसे चार ऋषियों में महर्षि दानंद जी कहते हैं कि ब्रह्म ने चार ऋषियों के अंदर प्रवेश करके एक आम जीव की तरह अंदर प्रवेश करके और अंदर से फिर ये चारों वेद एक एक ऋषि में प्रवेश करके उन्होंने बोले, उनसे उस ब्रह्म ने बोले, वो भूत की तरह नो प्रवेश हो जाता है और अपना ज्ञान देकर निकल जाता है, फिर वो जीव का जीव जो का नु रह जाता है। तो उसी समय वो काल अपने उस निज लोक तक आके, ऊपर काल का लोक भी है और नीचे आके श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। नहीं तो वो उसको मालूम था कि श्री कृष्ण तो अब कह देगा, जब अर्जुन मना करता लड़ने के लिए कह देगा चल बेटा शाबाश बहुत अच्छा रहे, कुछ ना बिगड़ा, अब तक क्या गया है, कुछ नहीं गया, सब जो कहते हुए है। लेकिन उसने देखा कि अब ये कृष्ण जी कह देंगे कि अब लड़ना नहीं है, चलो शाबाश। उसी समय वो काल आ गया और कृष्ण जी की आत्मा को दबा लिया। जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे में प्रवेश कर जाती है और उस बोलने वाली को कुछ भी, उस आत्मा जो ओरिजिनल होती है उसको कुछ नहीं मालूम है क्या बोल रहा था, जब तक वो प्रेत आत्मा उसमें रहती है और वो निकल कर चली जाती है, फिर वो ऐसे उठकर देखता है, वो आत्मा जिसको दबा लेती है जाके बेहोश कर देती है, स्वयं उसके स्थान पर बैठकर बोलती है। वो बाद में फिर कोई और ही बताते हैं, आप ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे थे, आपने ऐसे कहा था। तो वो दो चार बातें सीखकर फिर आप कहने लग जाता, एक दिन मैं ऐसे बोली थी, मैं उसे ऐसे बोला था, वो उसमें नहीं मालूम था उसे। तो ऐसे वो आ गया और श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया था, भगवान इस इंद्रप्रस्थ के राज के लिए तो लड़ूंगा क्या, अगर कोई तीनों लोगों का राज भी मुझे दे दे तो भी ना लड़ूं, लड़ाई हम नहीं करें, ऐसा जुल्म नहीं करूं। तो उसमें 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन और सबको खाने के लिए अब आया हूँ, परवर्त हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण तो पहले ना साथ रहा करते, पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूँ, बाद में कहा नहीं मैं काल हूँ, और उस समय जब कहा मैं काल हूँ तो ये सोचनीय विषय बना, और तू ना लड़ेगा ना तो भी मार दूंगा इनको, तू तो निमित निमित भाई। 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में अर्जुन कहता है, ए भगवान, उसका देख को भयंकर रूप डर गया, इतना अर्जुन जैसा योद्धा शेर दिल और कांप रहा है, क्योंकि इसने डरा के धमका के बकवाद करके इस काल में उस अर्जुन को युद्ध में प्रवेश करना था। अब उसके माध्यम से उस इसने ज्ञान भी देना था उस परमेश्वर के डरते, तो ज्ञान तो जहां तक ज्ञान का तात्पर्य बिल्कुल सही, और जहां इसने युद्ध करवाने की अटकल लगाई वो इसने अपने लेवल में अपने लेवल तक रखी। अब क्या बताया कि अर्जुन देख रहा है, कहने लगा ये भगवान आप उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, क्योंकि श्री कृष्ण को अर्जुन विष्णु का अवतार मान रहे थे और थे ही वो, और वो बोल सोच रहे थे कि ये कृष्ण बोल रहा है, ये चतुर्भुज भगवान विष्णु बोल रहा है, नहीं। वो कह रहे हैं कि हे विराट रूप, एक हजार भुजा के भगवान, सहस्राबाहु माने हजार भुजा के भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए, मेरे पर देखा नहीं जाता, मैं आपको वैसे ही शंख चक्र गदा लिए हुए देखना चाहता हूँ। नृतक है। और 47वें श्लोक में कहता है, अर्जुन को कहता है, वो भगवान कहते देख ले अर्जुन, ये है मेरा वो असली रूप, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है काल, और यो तेरे बिना पहले किसी ने कभी नहीं देखा था, ये मैंने कृपा करके तुझे दिखाया है, तेरे से पहले आज से पहले तेरे सिवा किसी ने नहीं देखा था। अब ये बात सोचनी पड़ेगी, जब अगर श्री कृष्ण गीता बोल रहे होते ये नहीं कहते कि तेरे बिना पहले ये विराट रूप मेरा किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि श्री कृष्ण तो कौरवों की सभा में वो विराट रूप अपना दिखा चुके थे, ये नहीं कह सकते थे। अभी देखो इसके लिए बाप ने फिर ये पवित्र गीता जी देखिएगा 11वें अध्याय के ये चंद श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर पहले 32 देखिएगा, इससे सिद्ध होगा कि मैं काल हूं। अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 32, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, काल है ये, काल है शब्द है, मैं काल हूं। इन्होंने अब चलो लेखक कुछ भी लिख सकता कोई बात नहीं, महाकाल हूं काल हूं, इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए परिवर्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। बोले ये तो भगवान श्री कृष्ण तो पहले ही विद्वान थे अर्जुन के साथ, ये नहीं कहते कृष्ण जी होते मैं अब आया हूं या परिवर्त हुआ हूं, इसलिए प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग तेरे बिना युद्ध ना किए बिना भी, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इनका सबका विनाश नाश हो जाएगा। अब देखो ये 46वें में कह दिया, आगे देखो 32वें, अब 46वें देखो, 46वें क्या कहा है, अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 46, ये मंत्र नंबर 46 है, मैं वैसे ही, अर्जुन कह रहा है मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा हाथ में शंख चक्र गदा लिए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए विश्व रूप हे विराट रूप हे सहस्र बाहो, 1000 भुजा के भगवान, सहस्र बाहो माने 1000 भुजा वाले, काल 1000 भुजा का भगवान है ब्रह्म, और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के, इनकी माता दुर्गा जो है 8 भुजा की, हे सहस्र बाहो ये भी पहचान है कि ये काल है, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रगट होइए। नीचे देखो अब 47 में ये काल बोल रहा है भगवान वाच, हे अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ये बात बहुत विचारण की बनी कि अगर कृष्ण जी बोल रहे होते ये शब्द नहीं कहते कि तेरे बिना पहले किसी ने नहीं देखा था। इति सिद्धम के गीता जो है श्री कृष्ण नहीं काल बोल रहा है, श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर स्थापित होकर और कह रहा है कि मैंने ये कि ये अपना विराट रूप तुझे दिखाई पहले किसी तरह दिखाई नहीं, तो श्री कृष्ण पहले दिखा चुके थे कौरों की सभा में। अब क्या होता है जैसे एक 100 वाट का बल्लभ हो और एक 200 वाट का और 1000 वाट का, अब चमक दोनों में लेकिन उनकी रोशनी मंत्र बहुत गना और फिर सूर्य उदय हो जा, इन सब भगवानों के तेजो में शरीर है। यजुर्वेद के अंदर 5वें अध्याय में स्वयं ये ब्रह्म काल बोलता, वेदों को भी ब्रह्म ने बोला काल ने, और ये क्या कहता है कि मेरा भी शरीर है वो भी चमकदार है और उस परमेश्वर का भी जनराट है, जनराट माने मनुष्य जैसा, जन माने मनुष्य व्यक्ति जैसा, और राट माने चमकदार तेजो में, मेरा भी चमक तेजो में शरीर है, उस परमात्मा का भी तेजो में शरीर है और आम देव का भी तेजो में शरीर है, लेकिन इनमें डिफरेंस अंतर बहुत है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का समझो 100 वाट का वल्लभ, इनकी माता का समझो 200 वाट का, इनके पिता का शरीर समझो 1000 वाट की ट्यूब वल्लभ हो, और कबीर परमात्मा को समझो ये सूर्य उदय हो जा, और परब्रह्म को समझो चंद्रमा, पूर्ण ब्रह्म को समझो सूर्य। तो ऐसे फिर क्या बताते हैं, तारा मंडल बैठे कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का वैसो तारों छुप जावे। तो परमेश्वर के उस वास्तविक शरीर के सामने, तेज के सामने इन सब का फीका हो जाए, दिखाई भी ना दे, जैसे सूर्य उदय होने के बाद ना चंद्रमा ना सितारे ना कुछ भी ना ट्यूब, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, यानी उनका कोई अहम नहीं, महत्व नहीं रहता। अब दो प्रमाण हो गए, फिर क्या होता है दूसरा, ये कहते हैं कि श्री कृष्ण इसलिए युद्ध करवा रहे थे, भगवान इसलिए युद्ध करवा रहे थे कि अर्जुन अपने अक्षत्रिय धर्म को भूल गया था, नहीं तो अक्षत्रिय निक्षत्रिय हो जाते और यह बात बिगड़ जाती, ये भी बात नहीं जची, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अक्षत्रिय थे और उन्होंने भी जब मथुरा पर काल्यवन चढ़ाई कर दी थी 18 करोड़ सेना लेकर, और ये मथुरा के राजा नियुक्त कर दिए थे, किसने, इनके नाना जी ने, अग्रसेन जी ने, इनके मामा कंस का जब इन्होंने वध कर दिया था उस राक्षस वृत्ति के व्यक्ति का, और इसके नाना जी ने कहा था बेटा मैं तो पहले तो वो विराजमान हुए थे गद्दी पे, लेकिन उसके बाद उसने कहा था बेटा मेरे बस की बात नहीं, आप संभाल लो इस सारे काम ने। तो श्री कृष्ण मथुरा के जब राजा बन चुके थे, कुछ ही समय उपरांत नारद जी ने आकर के उनको बधाई दी थी और साथ में ये बताया था कि एक गुफा है यहाँ पे और उसमें मुचकंद नाम का राजा सोया पड़ा है, और उसमें क्या शक्ति है कि 6 महीने जागता है 6 महीने सोता है, जागता जब युद्ध करता है, सोता है तो खराटे भर कर सोए, और कोई जगा दे उसने अधूरी निंद्रा में तो उसके आंखों के अंदर से अग्निबाण छूटते हैं और सामने वाले को भस्म कर देता है, संकेत कर गया नारद। और ये सारी कहानी काल करवाता है, उसके हाथ में रिमोट है, नारद भेज दिया, नारद ने कथा सुना दी चला गया। अब उधर से काल्यवन ने आक्रमण कर दिया 18 करोड़ से, मतलब 18 करोड़ सेना लेकर, कौरव और पांडव की दोनों की 18 सोनी थी, और अकेला काल्यवन 18 करोड़ सेना लेकर आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो बात बिगड़ेगी, ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने सैनिक मर जाएंगे, और इसकी शक्ति भी हमारे से ज्यादा ही है, लेकिन वैसे तो राजा लोग अपने युद्ध करने से उल्टे नहीं हटते, लेकिन ये भगवान युद्ध के विपरीत थे, और ये तो सतोगुणी परमात्मा थे, तीन लोग के मालिक थे, इतना इनमें ज्ञान था कि क्यों विनाश करा जरा सी बात के लिए, अपने एम की खातिर मैं क्यों सत्यानाश करवाऊं किसी का। तो काल्यवन से कहा कि आजा काल्यवन मेरे साथ कर युद्ध, सेना जरूर खड़ी कर लिया आमने सामने, और फिर भाग लिया युद्ध छोड़कर भगवान। उसके बाद उन्हें श्री कृष्ण जी को रण छोड़ भगवान कहने लगे, युद्ध छोड़कर भागने वाला भगवान नहीं, तो युद्ध छोड़ने वाले को तो कायर क्या करते हैं, फिर भी उनको भगवान कहा गया क्योंकि उन्होंने वो नेक काम किया, बुरा नहीं किया, और जाकर के उस गुफा में प्रवेश कर गया जहां पर मुचकंद सोया पड़ा था। काल्यवन उसके पीछे पीछे गया तो भगवान ने क्या करा, जाकर के अपना एक कपड़ा रखते हैं चादर से लगता है, पहले रखते थे वो पीले से रंग की, वो जाके काल्यवन उस पर मुचकंद पर उड़ा दी। आप थोड़े से अंदर गुफा में चले गए और काल्यवन आया, उसने देखा कृष्ण यहाँ छुप कर सो गया, अब मत बढ़ाऊंगा इसने, ठीक है, पकड़ कर टांग उसकी मुचकंद की, उसको श्री कृष्ण समझ कर और ऐसे मरोड दी, और कहा खड़ा हो कायर तो कि तुम कहां भाग कर आ गया। अब मुचकंद का दर्द होया, पीड़ा से कर्रा कर उठा, सामने अग्नि बाण छूटे, आंखों से काल्यवन का वध हो गया। श्री कृष्ण जी ने पकड़ कर, क्योंकि काल्यवन तो फिर खराटे भरने लग गया पड़कर, क्योंकि 6 महीने सोना उसने था, पकड़ कर टांग उस काल्यवन की, मुचकंद तो फिर सो गया और काल्यवन की पकड़ कर टांग घसीट कर कुत्ते की तरह जैसे मृत शरीर को, और काल्यवन की सेना के सामने पटक दिया। राजा की मृत्यु सेना की हार होती है और युद्ध नहीं होता। वो कहने जाते हुए कहने लगे अपने राजा की सब लेकर महामंत्री कि हम शीघ्र ही राजा नियुक्त करके आएंगे और कृष्ण तेरे से बदला लेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने सोचा अच्छे पागलों के बीच में आया था इनको कुछ सतमार्ग बताने के लिए, कुछ राहत देने के लिए, ये पागल कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ दिए। तो भगवान ने वो मथुरा त्याग दी और कहाँ पहुंच गए, विश्वकर्मा को बुला के विश्वकर्मा एक द्वार की समुद्र में टापू एक द्वार हो, उसमें और कोई रास्ता ना हो किसी राक्षस किसी राजा के आने के लिए, ताकि एक द्वार पर हम अपनी सेना रख लूं सारी और अंदर हम अपना सुख से बसे। एक द्वार इका एक द्वार की नगरी विश्वकर्मा की ने भगवान के आदेश से समुद्र का टापू देख कर वहाँ पूरा नगर बसा दिया बना दिया और भगवान वहाँ से लेकर सारे यादव को वहाँ पहुँच गए, बाकी का समय वहाँ व्यतीत किया। अब क्या होता है, फिर क्या बताते हैं, युद्ध पूरा हुआ तो पांडव विजयी हुए, कौरों का विनाश हुआ, युधिष्ठिर को राजगद्दी दे दी। राजगद्दी देकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अब द्वारका जाता हूँ, तुम संभालो अपने राज्य को। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के और यादों के धार्मिक गुरु थे, जैसे ज्ञान शिक्षा ये धार्मिक आध्यात्मिक गुरु थे। एक तो ज्ञान गुरु होता है अक्षर गुरु, अक्षर ज्ञान कराने वाला, एक आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण यादव और इनके पांडव के यानी आध्यात्मिक गुरु थे। तो सब ने मिलकर एक फैसला किया, एक सलाह की कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, क्यों ना इन गुरुदेव से एक सत्संग करवा लें और जैसा ये हमें वचन कहेंगे इनके वचनों के ऊपर चलकर अपना जीवन सफल करेंगे, कहीं कोई गलती ना कर दें हम बाद में। ऐसी प्रार्थना की भगवान से सबने मिलकर, भगवान ने वो स्वीकार की, स्थान समय और तिथि निहित कर दी।